टुडेज न्यू क्लास एकदम आज नया टॉपिक है, लीक से हट के है, कंटिन्यूएशन तो एविडेंस था मगर अभी हम लोगों ने 31st लेक्चर के बाद रोक दिया है टिल द कंप्लीशन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एंड द लिमिटेशन एक्ट। दो एक्ट हम लोग पढ़ ले, दो तीन दिन जितने दिन लगेगा फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आज का इंट्रोडक्शन, टुडे इज 30th November 2023 एंड ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ दिस थर्सडे, जुमेरात के दिन हम लोग इस थर्सडे के दिन है ना स्पेशल ओकेजन पे वी हैव डिसाइडेड टू डिस्कस अबाउट द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पढ़ने की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आप सबको ऑनलाइन हम लोग ने नोट्स दिए हैं जो इधर बना पाए फ्रॉम दीपावली से लेकर अभी तक, हम लोग इसको एक बार दो बार चार बार, क्योंकि आदत है कम से कम बेयर एक्ट को 100 बार पढ़िए तब समझ में आती है, और उतना तो अभी नहीं हो पाया क्योंकि ये यूपी के सिलेबस में है नहीं, तो मगर फिर भी इस बार हम लोग प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब यूपी के सिलेबस में ADR है और ADR जब भी लिखना पड़ता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग इसी रेफरेंस में कि हम लोग को यूपी में भी काम आएगा, हर स्टेट में काम आएगा जहाँ CPC है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इसके पहले जो एक्ट था ना आर्बिट्रेशन, वैसे तो बेसिकली फोकस्ड है दिल्ली में ना, अभी जो 17th December को आने वाला है वो दिल्ली के लिए है, मगर जनरल जो लोग दिल्ली नहीं भी पढ़ रहे हैं या नहीं भी देंगे वो भी जनरली जाने, इसके पहले 1940 का एक्ट था, इसके पहले जिस एक्ट था वो था 1940, उसका नाम था आर्बिट्रेशन एक्ट। देखिए जो नया एक्ट बनाया 1996 में यूनाइटेड नेशन UNCTRL बोलते ना, उसके रिफरेंस में इसको बनाया गया और इसमें आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन दोनों जोड़ा गया। कंसिलिएशन वाज नॉट पार्ट इन 1940, थोड़ा सा इसको देखेंगे समझेंगे, पहले एक वेयर एक्ट का आउटलाइन लेंगे, थोड़ा सा इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। उसके पहले हम लोग जानते हैं जो इंडिया में जितना भी डिस्प्यूट सॉल्व करने का जो मेन प्रिवेलेंट सिस्टम है वो लिटिगेशन है, फॉर्मल एडजुडिकेशन। तो देखिए एडजुडिकेशन का मतलब होता है न्याय निर्णयन, डिसीजन बाय कोर्ट ना, एडजुडिकेशन का क्या मतलब होता है डिसीजन। तो देखिए एडजुडिकेशन हमेशा जानिएगा दो तरह का होता है, एडजुडिकेशन इज ऑफ टू काइंड्स, एक होता है फॉर्मल एडजुडिकेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल एडजुडिकेशन। जो फॉर्मल एडजुडिकेशन है इसको हम लोग लिटिगेशन कहते हैं, हम लोग जनरली यूज क्या करते हैं फॉर्मल एडजुडिकेशन। फॉर्मल एडजुडिकेशन का मतलब व्हेन केस या मैटर इज डिसाइडेड बाय अ कोर्ट आर अ जज आफ्टर टेकिंग रिजर्व टू CPC CRPC एटसेट्रा, उसको क्या बोलेंगे फॉर्मल एडजुडिकेशन। फॉर्मल एडजुडिकेशन वो एडजुडिकेशन होता है जो कोर्ट के थ्रू मैटर सॉल्व कराया जाता है और इसको हम लोग लिटिगेशन कहते हैं। इसमें जो सॉल्व करते हैं वो कौन होते हैं जज, जज इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक, ये हो गया फॉर्मल एडजुडिकेशन। और एक नए तरह का एडजुडिकेशन का जन्म लिया जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल एडजुडिकेशन, जो फॉर्मल से ज़्यादा आजकल ताकतवर दिख रहा है, तो सेकेंड एडजुडिकेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल एडजुडिकेशन। इनफॉर्मल एडजुडिकेशन द मैटर इज डिसाइडेड बाई अ प्राइवेट पर्सन एंड दैट प्राइवेट पर्सन इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर, ध्यान रखिएगा। इन इनफॉर्मल एडजुडिकेशन मैटर इज डिसाइडेड बट डिसाइडेड बाई अ प्राइवेट पर्सन हु इज डिजिग्नेटेड एज आर्बिट्रेटर, तो वेन अ प्राइवेट पर्सन एडजुडिकेट द मैटर इट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को इसीलिए इनफॉर्मल एडजुडिकेशन कहते हैं और आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्वासी जुडिशियल होता है। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है क्वासी जुडिशियल। फॉर्मल जो एडजुडिकेशन था वो कैसा होगा? जुडिशियल। और ये कैसा होगा? क्वासी जुडिशियल। तो अब मैटर को सॉल्व कराने के लिए आज की अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं। आइदर वी कैन मूव टू द कोर्ट फॉर फॉर्मल एडजुडिकेशन और लिटिगेशन। अब वो तो कोर्ट में जाओगे ना, कोर्ट में जाओ, कोर्ट क्या तुम्हारे लिए बैठी है? तुमको पहले हमारा काम कर दिए, बाकी छोड़ दीजिए। कोर्ट कहेगी तुमने हमको तनख्वाह नहीं दे रहे हो, हमें किसने अपॉइंट किया है? हम इसको टाइम विद प्रोसीजर देखेंगे और जो सीरियल के हिसाब से वी विल सॉल्व इट। समय लगेगा ना, टाइम लगेगा। अच्छा, फॉर्मल एडजुडिकेशन में दिक्कत क्या, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन। हम आपको भेज देंगे। फॉर्मल जो लिटिगेशन है, एडजुडिकेशन, इसमें बहुत समय लगता है, कोर्ट खाली नहीं है, केवल आप ही के लिए तो बैठी नहीं, ठीक है। फिर पहले आप मैटर के लिए कोर्ट फीस दोगे, फिर अपने काउंसिल को कोर्ट फीस दोगे, होता है ना भाई, एडवोकेट को भी तो दोगे, इंगेज करोगे, फिर बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी तक एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हो, अभी तक चल रहा है ना, सीपीसी पढ़ाएंगे और देखिएगा कितना लंबा प्रोसीजर है, बड़ा लेंदी था। इसकी जगह पर लोगों ने कहा कुछ और मेथड देखा जाए। डिसाइड तो कोई व्यक्ति ही करे, मगर इसमें इतना कॉस्टली ना हो, कोर्ट फीस हमें ना देना हो, हमारे लिए जो बंदा बैठा हो केवल हमारे लिए बैठा हो, हम जिसको बैठाएं वो डे टू डे हमारा ही काम करे, विद इन टाइम लिमिट करे, और केवल हमें केवल देना क्या पड़े, आर्बिट्रेटर की फीस, कोर्ट फीस हमको देना। अब ये सेकेंड अल्टरनेटिव डेवलप हो गया, इसीलिए इसको ADR बोलते हैं ना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम थ्रू इनफॉर्मल एडजुडिकेशन, और ये था आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का इसीलिए लाभ मिला लोगों को, क्योंकि लोगों ने क्या किया कि खुद अपॉइंट किया, रूल रिलैक्स कराए, और फिर उसमें डे टू डे एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वो पेमेंट कौन दे रही है, पार्टीज ना, तो आर्बिट्रेटर भी उनके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी से जल्दी मैटर को क्या कर देगा, सॉल्व। तो ऐसे मामलों में खासतौर से कमर्शियल लिटिगेशन वो खूब इसमें आने लगे, मगर इसके साथ देखा गया एडजुडिकेशन की अपनी एक प्रॉब्लम है, हमेशा जगह निर्णय की एक प्रॉब्लम वो यहाँ पे भी देखी जाने लगी। तब 1996 में एक और फॉर्म, एक प्रोसीजर की बात की गई और कहा गया एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन में फॉर्मल है तो कोर्ट कर रही, इनफॉर्मल है तो कौन सॉल्व कर रहा, आर्बिट्रेटर। अब कहा एक नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस भी बनाओ। देखिए एडजुडिकेशन में तो दोनों पार्टी को सुनना पड़ेगा ना, एडजुडिकेशन का बेसिस क्या है, हर्ड द बोथ पार्टीज देन गिव द जजमेंट, यहां भी सुनना पड़ेगा, साल डेढ़ साल दो साल लग ही जाता है, फिर दिक्कत आई। तो एक और प्रोसेस किया गया जो नॉन एडजुडिकेटरी था, नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस जिसमें दोनों पार्टी को नहीं सुनना है, जहां कोई बंदा जज के रूप में नहीं बैठेगा, वो फैसिलिटेटर बैठेगा, और उसी को कंसिलिएशन बोलते हैं। यानी जो नेक्स्ट मेथड प्रीवेलेंट होने लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिलिएशन, ठीक है। कंसिलिएशन यानी सुलह, दोनों पार्टीज का मैटर लेके, जो आर्बिट्रेटर बना था वो तो डिसाइड कर रहा था, अब यहाँ जो बंदा है वो आर्बिट्रेटर नहीं है, वो कंसिलिएटर है, दोनों की बातों को सुनकर एक बीच का रास्ता दोनों पार्टी को दे देगा, कहेगा आप लोग चुन लीजिए, तो कंसेंट डिक्री पास हो जाए। यानी कंसिलिएशन नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। तो हम जब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन पर एक्ट पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें देखना दोनों प्रोसेस है ना, एक है एडजुडिकेटरी, जज के रूप में कौन किसको बैठा दिया तुमने, आर्बिट्रेटर को, ये है एडजुडिकेटरी। यहाँ आर्बिट्रेटर को भी वही काम करना, दोनों पार्टी को सुन के समझने के बाद डिसीजन देगा, जो भी डिसीजन होगा अवार्ड होगा, देट विल बी फाइनल, इसको कहते हैं एडजुडिकेटरी। अब अगर ये दोनों पार्टी तय कर लें कि कोई जज नहीं, एक आदमी बैठाओ जो हम लोग के बीच समझौता करा दे, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे नॉन एडजुडिकेटरी। इसको जो नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे कंसीलिएशन, और कंसीलिएशन भी एक्सैक्टली इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, ADR के, ठीक है। तो अब देखिए द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, नाम सबको क्लियर हो गया, आर्बिट्रेशन का मतलब एडजुडिकेटरी और कंसिलिएशन का मतलब नॉन एडजुडिकेटरी। आप सब वेयर एक्ट एक बार देखिए, 1996 की वेयर एक्ट देखिए और देखिए, आई थिंक इट कंसिस्ट ऑफ 87 सेक्शंस। पहले वेयर एक्ट खूब एक बारीक नजर, क्योंकि सारा क्वेश्चन, आई रिपीट, सारा क्वेश्चन वेयर एक्ट पे बेस्ड है। देखिए टोटल सेक्शन कितने हैं, 87, टोटल 87 है। अब देखो एक बार पार्ट देखो, ये चार पार्ट में डिवाइडेड है। दिस वेयर एक्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। इस वेयर एक्ट को देखो तो चार भागों में विभाजित है और एक पार्ट 4A है ना, एक पार्ट, सॉरी फर्स्ट ए, फोर्थ ए कह रहे हैं, एक पार्ट अभी ऐड किया है। तो एक बार ध्यान से देखिए और देखिए, चार पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, पहला पार्ट देखो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, सेक्शन 2 से लेकर देखिए 44 या कितने तक है, देखिए 43 तक, सेक्शन 2 से लेकर 43 है, ये फर्स्ट पार्ट है। ये पूरा किस पे डील करता है, आर्बिट्रेशन, किस मैटर का आर्बिट्रेशन होगा, कौन सा मैटर का आर्बिट्रेशन नहीं होगा, आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, आर्बिट्रेटर कैसे रिमूव होगा, आर्बिट्रेटर कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करेगा, आर्बिट्रेटर जो अवार्ड लेगा वो फाइनल होगा मगर उसका चैलेंज कैसे होगा, ये सारा प्रोसीजर कहां से कहां तक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन इज दिस पार्ट, इसी से पूछा ही जाता। तो पहला पार्ट हो गया जिसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 2019 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया आर्बिट्रेशन में, और एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। देखिए नेक्स्ट पार्ट है पार्ट फर्स्ट ए, मिला सबको पार्ट फर्स्ट ए, देखिएगा मेरे ख्याल से 43A है ना, 43A से लेकर एम एम होगा ना, एम, इसको ध्यान से देखिए। नया पार्ट कब से ऐड किया गया है, 2019 में इस पार्ट को ऐड कर दिए, और ये हो गया आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। पार्ट थर्ड देखो, सेकंड देखो, इन्फोर्समेंट, रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। अभी सब धीरे धीरे समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा ना क्लियर। देखो पहला ऑपरेशन है, ठीक, बाकी तो 200 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं, कैची, इसमें थोड़ा रुई और कैची का ध्यान देना, ठीक। तो सेकेंड पार्ट कौन सा है, फॉरेन अवार्ड, दिस इज माई फर्स्ट क्लास इन माई लेक्चर लाइफ रिगार्डिंग दिस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। भाई पहले बता दें, भूल चुप माओ। सेकेंड पार्ट कौन सा हो गया, रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। फॉरेन अवार्ड का मतलब ना, मानो विदेश में मैटर सॉल्व हो गया, विदेश की आर्बिट्रेशन से तुम मैटर सॉल्व करा लाए और भारत में इसको इन्फोर्स कराना है, तो कैसे इन्फोर्स होगा, ये सब किस पार्ट में मिलेगा, सेकेंड। अच्छा पार्ट थर्ड में आओ तो देखो एक कंसिलिएशन आ गया, या ना, जिसमें एडजुडिकेशन नहीं होगा, एक 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 आदमी मीडिएशन करा के दोनों के मैटर को सॉल्व करा कर मैटर को कंसेंसस रूप में सॉल्व करा देगा। तो देखो तीसरा पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, मेरे ख्याल से 61 ना, 61 से लेकर 81 तक देखो थर्ड पार्ट है, और चौथा मिसलिनियस है, फोर्थ पार्ट इज मिसलिनियस। एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, दिस आर्बिट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, फर्स्ट इज आर्बिट्रेशन, अनदर इज एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, नेक्स्ट इज अ कंसिलिएशन, लास्ट इज अ मिसलिनियस। और जरा बेटा आपकी सर को देखो, और नेक्स्ट है फॉरेन इंस्टीट्यूशन। अब देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन 2019 में ऐसा क्यों किया गया, आखिर क्यों किया गया कि फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की आखिर जरूरत क्या पड़ी, दिल्ली में बनाया गया, एक पूरा एडजुडिकेटरी प्रोसेस बना दिया गया, एक ऑफिस बना दिया गया जहां बहुत ढेर सारे आर्बिट्रेटर बैठेंगे जिनकी क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर वो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बैठी होगी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो आके अपना लिटिगेशन वहां सॉल्व करा ले, देश में ही नहीं विदेश में। आप बताइए इस समय जो मेथड चल रहा है, विदेशों से सस्ता मेडिकल लेने कहाँ आते हैं लोग, इंडिया में, किसका था
वो रिन्यूअल
आए, देखो हाँ वो भी मेडिकल का रिन्यूअल है। अब देखो सस्ता मेडिकल के लिए आप कहाँ आते हो इस समय, देखिए लंदन वंदन से सब ये मेडिकल टूरिज्म पे यहाँ आते हैं लोग, उसी तरह भारत में सस्ती लीगल सर्विसेज भी हैं। अब इंडिया में इस बिजनेस को आउटसोर्सिंग को बहुत बढ़ाना है, इसके लिए सरकार ने सुना सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में, से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ से अपना झगड़ा सॉल्व कराने लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, क्यों ना इंडिया में एक्सपर्ट्स बैठाए जाएं और फॉरेन के भी कोई पार्टीज चाहें तो इंडिया में अपना मैटर दे दें ऑनलाइन और यहाँ पर उनका क्या हो जाए मैटर सॉल्व। इसीलिए टू प्रमोट दिस लीगल सर्विसेज बिजनेस दिल्ली में आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्सपीरियंस रखा गया, इतने दिन का आर्बिट्रेशन का एक्सपीरियंस हो, वहाँ आर्बिट्रेटर नियुक्त हो जाएंगे, कई ऑफिसेज रहेंगे, आप मैटर वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कीजिए, आपका मैटर भेज दिया जाएगा, वहाँ साल हो जाएगा, साल होने के बाद फीस जो होगी वो इंडिया में रुपया के हिसाब से फीस बहुत ही सस्ता रहेगा, अमेरिका में फीस जो चार्ज करते हैं किसके हिसाब से डॉलर। तो ये देखा गया कि बिजनेस बहुत ज़्यादा इंडिया की ओर देख रहा है, तो सर्विसेज सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए 2019 में 2019 में एक नया पार्ट ऐड किया गया, एंड देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली में बनाया गया है और बहुत सफल हो रहा है, आगे और सक्सेसफुल होगा, इसी में आपका लीगल आउटसोर्सिंग और तमाम बिजनेस बहुत प्रमोट हो रहे हैं। इस तरह से इनिशियली चार पार्ट थे, देर आर फोर पार्ट, एक पार्ट बढ़ गया, तो टोटल कितने हो गए, अब फाइव पार्ट हो गए, अगर वन ए को भी हम ऐड कर लें तो कितने पार्ट हो गए, पांच पार्ट हो गए। ठीक, हमारे इस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जो है इसमें दो प्रोसेस हैं, फिर से मैंने बताया, एक है एडजुडिकेटरी प्रोसेस, आप एक प्राइवेट व्यक्ति से अपना मैटर सॉल्व कराते हैं, उस प्राइवेट व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेटर, और चाहते हो कि एडजुडिकेशन ना हो, फैसिलिटेशन हो, काउंसलिंग हो, मीडिएशन हो, तो फिर उसमें किस में चले जाना, कंसीलिएशन। दोनों प्रोसेस इक्विवेलेंट है, हमारे यहाँ इक्वली एप्लीकेबल है। अब देखिए, आपने कहा सर फॉरेन, विदेश, विदेश के लोग आएंगे, आप बताओ विदेश का इंटरनेशनल अवार्ड है, इंटरनेशनल मैटर है, विदेश का मैटर है तो यहाँ कैसे सॉल्व होगा, आप देखिए लॉ कौन सी लगेगी, अमेरिका और इंग्लैंड का झगड़ा है, दो पार्टीज बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन अमेरिका का है, दूसरा बिजनेसमैन मानिए इंग्लैंड का है, अब वो सॉल्व कराना चाहता है तो सिंपली, या आप बताइए कौन सा लॉ लगाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज हो गया ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्बिट्रेशन एक्ट कहता है आर्बिट्रेशन एक्ट डील विद द फॉर्म एंड नॉट विद द सब्सटेंस, आर्बिट्रेशन फॉर्म के बारे में डील करता है, कैसे सॉल्व कराएंगे, हमें सब्सटेंस नहीं देखना है, रूल ऑफ लेक्स लोकी विल बी वेल एप्लीकेबल, पार्टीज जो लॉ बताएं हम वही लॉ लगा देंगे, अगर पार्टी करेंगे नहीं, हमारे एग्रीमेंट क्लॉज में लिखा है कि लंदन की लॉ अप्लाई होगी, तो हमारा इंडिया का तो जानते हैं डब्ल्यू बहुत तेज है, वो कहेगा ओके आई विल डिसाइड योर मैटर, इंडिया का जो आर्बिट्रेटर है कहेगा आई विल डिसाइड योर मैटर अकॉर्डिंग टू, इसीलिए रूल ऑफ लेक्स लोकी सेक्शन 28। जनता क्या मान रही है, मोदी मोदी क्या कल देखे हो कौन बचाया है, वो रेड माइनर्स हैं, कभी कोई खोटा सिक्का बहुत काम आता है, वो सब बताइए वो कौन थे जो शायद कोल की चोरी करते हैं, उन्होंने कहा अभी 24 घंटे दो तुम्हारा मशीन उशीन हो गया ना, अभी हम खोद के निकाल लाते हैं, जो सेंध लगाते थे वही गए निकाल के ले आए सबको, वही अपना मार फॉरेन से एडवाइजर और लगा रहे थे, तो सीधी बात है, देखो जुगाड़ जहाँ चलता है वहाँ सब फेल होता है, इसीलिए सेक्शन 28 एक बार देखो, रूल ऑफ लेक्स लोकी, अभी स्टार्ट करेंगे मत, पहले कुछ चीज जानो, रूल ऑफ लेक्स लोकी है, अगर एक पार्टी एक नेशन की है दूसरी पार्टी कहीं और की है तो कौन सा लॉ लगे, पार्टी डिसाइड करे, अगर पार्टी ना डिसाइड कर पा रही हो तो पार्टी खुद ही कह देती कि सर आप इक्विटी के हिसाब से सॉल्व कर दो, एक्स इक्वो एट, आर्बिट्रेटर कहता ठीक है हम अपनी विजडम से सॉल्व कर देंगे। सेक्शन 21 जो कहता है 28 जो कहता है कि हम सब्सटेंस पे ध्यान, सब्सटेंस आप बताइए कौन सी लॉ हम लगाएं, वी विल डिसाइड दैट मैटर। 28 एक बार पढ़ दीजिए।
चैप्टर 6 मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग,
इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ,
सेक्शन 28 रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट, सब सेक्शन 1 वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज सिचुएट इन इंडिया, ए इन एन आर्बिट्रेशन अदर देन एन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द सब्सटेंटिव लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया।
देखो कह रहा है, अगर डोमेस्टिक, दो तरह का आर्बिट्रेशन होता है, एक डोमेस्टिक मैटर कहाँ का हो, इंडिया की डोमेस्टिक, और इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन मैटर कहाँ का हो, कह रहा इंडिया का मैटर है तो आर्बिट्रेटर कहाँ का ला लगाएंगे, लेक्स लोकी भारत का ला लगाएंगे। अब देखिए दूसरा,
बी इन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, फर्स्ट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ लॉ डेजिग्नेटेड बाय द पार्टीज एज एप्लीकेबल टू द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट।
अब देखिए कितना अच्छा कह रहा है, अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो फिर पार्टी बताए ना, फिर आर्बिट्रेटर किस लॉ के हिसाब से डिसाइड करेगा, तब इंडियन लॉ नहीं देगा, लेक्स लोकी क्या कहता, फिर आप बताओ कि कौन सी लॉ आपके माध्यम से डिसाइड करना चाहते हो, हमने तो सारी लॉ आती है। देखो भारती क्या कह रहा है, वी नो ऑल द लॉज, तुम बताओ कौन सी लॉ पे हम डिसाइड करेंगे। देखिए इंटरनेशनल कॉमर्शियल अवार्ड के मामले में पूछा जाए कौन सी लॉ लगेगी, तो पहले इंस्टांस में कौन डिसाइड करे, पार्टीज। देखिए हाँ,
सेकेंड एनी डेजिग्नेशन बाय द पार्टीज ऑफ द लॉ और लीगल सिस्टम ऑफ गिवन कंट्री शैल बी कंस्टिट्यूट unless otherwise expressed as directly referring to the substantive law of that country and not to its conflict of law rules. Third, failing any designation of the law under clause A by the parties, the arbitral tribunal shall apply the rules of law it considers to be appropriate given all the circumstances surrounding the dispute. Subsection 2. The arbitral tribunal shall decide ex aequo et bono or as amiable compositior only if the parties have expressly authorized it to do so.
Or
subsection 3, last, while deciding and making an award, the arbitral tribunal shall in all cases take into account the terms of the contract and trade usages applicable to the transaction.
इसको ध्यान से देखिए, क्यों मैंने 28 से शुरू किया, क्योंकि कौन सी लॉ लगाई जाए, आर्बिट्रेटर कौन सी लॉ लगाएगा, तो कह रहा है अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, डोमेस्टिक समझ गए ना, दोनों पार्टी इंडिया की है, मैटर इंडिया का है, तो फिर तो इंडियन लॉ लगेगा, सब्सटेंस कौन सा लॉ लगेगा। मगर अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है, यानी मैटर विदेश का है, तो पार्टीज बताएं कि कौन सी लॉ उन पर अप्लाई कराई जाए, किस लॉ से सॉल्व कराया जाए। अगर वो लोग फेल हो जाते हैं तो आर्बिट्रेटर खुद अपने हिसाब से चूज करेगा। और नेक्स्ट जो सेक्शन है कह रहा है अगर पार्टी खुद चूज कर ले, देखिए पार्टी चूजेज है ना, ये जब पढ़ते होंगे तो आप लोग को याद आ जाता होगा आईसीजे का स्टेट्यूट एक्स इक्वो एट बूनो, कह रहा है अगर दोनों पार्टीज, देखिए लिखा ना इफ बोथ पार्टीज, सब सेक्शन 3 में देखिए,
while deciding and making an award the arbitral tribunal shall in all cases take into account the terms of the contract the arbitral tribunal shall decide ex aequo et bono or as amiable compositior only if the parties have expressly authorized it
expressly
to do so.
authorized underline कीजिएगा, subsection 2 है ना, कह रहा है अगर पार्टी expressly authorize कर दे कोर्ट को, तब कोर्ट कहेगी ठीक है हम इक्विटी के हिसाब से डिसाइड करेंगे, फिर कोर्ट कहेगी ला हटाओ। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे इसको, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो देखिए पहले में तो आर्बिट्रेटर ने कहा जजमेंट एडजुडिकेशन अकॉर्डिंग टू द लॉज अप्लीकेबल टू द पार्टीज, पहला ये कहा। दूसरा कहा अगर खुद पार्टी तैयार हो जाए, कहते हैं सर इसमें लॉ वगैरह मत देखिए, आप इसको नेचुरल जस्टिस के हिसाब से मैटर सॉल्व करो, तो फिर अगर एक्सप्रेसली पार्टी कहते हैं तो फिर कोर्ट कौन सी लॉ लगाएगी, नेचुरल जस्टिस यानी इक्विटी। इक्विटी का मतलब फिर कोई लॉ नहीं। अब आप दोनों पार्टीज की सबसेंस पढ़ो, समझो, और जो आपको लगता हो वो आप निर्णय दे दीजिए। तो अब देखिए 28 कहता है कि पूछा गया कि कौन सी लॉ लगेगी डिसाइड करने में, तो 28 बहुत फ्लेक्सिबल देता है, रूल ऑफ लेक्स लोकी इसीलिए बोलते हैं ना, रूल ऑफ लॉ, लोकल लॉ, जो जहां का है हम उसी के हिसाब से डिसाइड कर देंगे, लेक्स लोकी के हिसाब से ही सेक्शन 28 बेस किया गया है। तो आर्बिट्रेटर्स कंसंट्रेट ऑन फॉर्म एंड नॉट ऑन सब्सटेंस, सब्सटेंस आप बताइए, लॉ आप बताइए, हम उसी के हिसाब से डील कर लेंगे, 28 इसी पर बेस्ड है। अब देखिए जब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन ऑफ इंडिया पार की पास किया गया, इसको इसका महत्व ज्यादा क्यों बढ़ा, जब से 2002 का अमेंडमेंट हुआ ना सीपीसी में, और इतना समझ में आ गया कि फॉर्मल लिटिगेशन जल्दी संभव, अगर आप सीपीसी और एविडेंस एक्ट का प्रोविजंस फॉलो करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि इतना हैवी पेंडेंसी एंड हो जाए, तो फिर कोर्ट की ही जिम्मेदारी कर दी गई, कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि जब आपके पास कोई सिविल लिटिगेशन आए ना, तो आने के बाद एडमिशंस वगैरह कराने के बाद फिर खुद ही कंपोजिशंस ड्रॉ करो, और ऑर्डर 10 रूल 1A, ऑर्डर 10 रूल 1A सीपीसी कहता है इट शैल बी ड्यूटी, शैल वर्ड है, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इफ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन इज पॉसिबल देन आस्क कॉल द पार्टीज, पार्टी को बुलाए और पूछे कि तुम चाहो तो अल्टरनेटिव हमारे के अलावा कहीं और से अपने मैटर को सॉल्व करा सकते हो, और हम मैटर को क्या कर सकते हैं, वहां भेज सकते हैं। अब कौन अलावा वाले में है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, ठीक है, मीडिएशन और जुडिशियल सेटलमेंट, तो तुम चाहो तो दोनों पार्टी अगर एग्री हो तो हम वहां मैटर भेज दे, वहां से मैटर सॉल्व करा लो, आपका मैटर सस्ते में और जल्दी, और ध्यान रखिए फ्री के लिए क्वेश्चन, अगर तुमने भाई अगर लिटिगेशन फाइल किया तो कोर्ट फीस जमा किए होगे ना, अगर मैटर आपका एडीआर से सॉल्व हो गया तो सारी कोर्ट फीस वापस हो जाती है, ध्यान रखिएगा ये जीएस का क्वेश्चन है, अगर मैटर कोर्ट ने भेज दिया आर्बिट्रेशन में और आर्बिट्रेटर ने मैटर सॉल्व कर लिया, तब फिर ये जो कोर्ट फीस हमने कोर्ट में दी थी वो वापस होगी, वो रिटर्न होगी, लीगल सर्विसेज 38 में लिखा है वो फीस वापस की जाएगी, क्योंकि कोर्ट को फीस क्यों दिए थे, मैटर सॉल्व करने, कोर्ट ने सॉल्व, आपका फीस वापस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जब पार किया गया, इसको पास कराया गया, तो इस ये पास होते ही इसने कुछ जो पुराने एक्ट थे उनको रिपील कर दिया। तो सबसे पहले ये देखें कि इसने किसको, इस 1996 के एक्ट ने किसको रिपील किया, तो 85 सेक्शन निकाल लीजिए, वो पढ़े हम भी इधर, अपने पढ़ने के लिए तो नहीं कभी पढ़े, पढ़ाने के लिए पीएम ने कब पढ़ रहे हैं, 85 देख लीजिए, सेविंग्स एंड रिपील होगा,
सेक्शन 85 रिपील एंड सेविंग्स, सबसेक्शन 1 द आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन कन्वेंशन एक्ट 1937, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एंड द फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961 आर हियर बाय रिपील्ड।
अब पूछा जाए इस एक्ट ने 1996 के एक्ट ने किन तीन एक्ट को रिपील कर दिया, तो देखिए 1937 का है और पुराना वाला आर्बिट्रेशन एक्ट, 1940 वाला 1940 और एक फॉरेन अवार्ड, इन तीनों को हटा दिया क्योंकि तीनों के प्रोविजन कहां पर आ गए इसी सेक्शन, तो इन तीनों को हटा दिया गया। अब आप फिर आ जाइए सबसे शुरुआत में, आप सब बेर एक्ट निकाल दिए, ये जो आर्बिट्रेशन का जो देखा जाए ना, जो इसका जन्म है देखा जाए बर्थ है, वो अमेरिका से है, कहाँ से आया, जितना नए टाइप का जो सिस्टम है ना लिटिगेशन वो अमेरिकन लॉ है, और अमेरिका में एक मॉडल लॉ आती है, वहाँ आर्बिट्रेशन एक्ट को क्या बोलते हैं, मॉडल लॉ, MODEL, मॉडल लॉ ही वहाँ की आर्बिट्रेशन लॉ है, और उसी मॉडल लॉ पर बेस करके सारे वर्ल्ड की लॉ बनी है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। तो ये जो मॉडल लॉ है वो फिर UNCTRL वो, और कुछ चीजों को और कंबाइन करके ये आपका नया एक्ट बना है। तो सबसे पहले बेयर एक्ट में सबसे शुरुआत की चीज पढ़ाने चल रहे हैं, आप सब बेयर एक्ट में टिक करिएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन बेयर एक्ट पे। हाँ,
शुरुआत से द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन अमेंडमेंट एक्ट इस
वर्जन, अभी अमेंडमेंट बाद में कराएंगे, नहीं बेयर एक्ट से पढ़ना।
हाँ, उनको लगता यही है ही शुरुआत की चीज है। An act further to amend the Arbitration and Conciliation Act 1996.
ये नहीं, ये तो amendment पढ़ रहा है। तुम 1996 वाला पढ़ो।
Oh my God, New Delhi International.
अरे उससे पूछ लो ना, ये
जल्दी से बता दे। हाँ। The Arbitration and Conciliation Act 1996. An act to consolidate and amend the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration and enforcement of foreign arbitral award, as also to define the law relating to conciliation and for matters connected therewith or incidental thereto.
देखो, चार चीजें हैं, 1, 2, 3, 4 कितनी चीजें इसमें बताई गई। ये एक्ट जो है किसको कंसोलिडेट कर रहा है, किन के लॉ, हमने कहा चार पार्ट में है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नंबर दो, तीसरा देखो इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, और चौथा कंसी। चार चीजों के लिए देखिए ये एक्ट बनाया गया है, ये चारों चीजें टिक कर लीजिए आप लोग। फोर थिंग्स हैं, चार चीजें हैं जिनको इम्बॉडी करता है ये चारों चीजों के लिए ये एक्ट बना हुआ है, ठीक है। और चलिए
प्रीएम्बल, वेयर एज द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ,
UNCITRL बोलते हैं ना, UNCITRL ना, UNCITRL, हाँ,
हैज अडॉप्टेड द UNCITRL मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन इन 1985 and whereas the General Assembly of the United Nations has recommended that all countries give due consideration to the said model law in view of the desirability of uniformity of the law of arbitral procedures and the specific needs of international commercial arbitration practice, and whereas the UNCITRL has adopted the UNCITRL conciliation rules in 1980, and whereas the General Assembly of the United Nations has recommended the use of the said rules in cases where a dispute arises in the context of international commercial relations and the parties seek an amicable settlement of that dispute by recourse to conciliation, and whereas the said model law and rules make significant contribution to the establishment of the unified legal framework for the fair and efficient settlement of disputes arising in international commercial relations, and whereas it is expedient to make law respecting arbitration and conciliation taking into account the aforesaid model law and rules, be it enacted by Parliament in the 47th year of the Republic as follows.
अब देखिए इसमें ये प्रीएम्बल नहीं पढ़ने वाला है। पढ़िए
आप, समझ में आया।
आप देखिए भाई, पहली बार पढ़ रहे हैं, पहला होता है तो जानते ही हो, पहली पहली बार तो समझते ही, ठीक। तो प्रीएम्बल में नहीं था, मतलब उसके पहले वो चार चीजें हमें इंपॉर्टेंट दिखी थी कि ये एक्ट में क्या क्या चीजें गवर्न कर रही, वो आपने चार टिक कर लिया। फिर अब क्या करना है कि ये एक्ट चूंकि बेस्ड है पूरा फॉरेन इंटरनेशनल कन्वेंशन है, UNCITRL बोलते हैं ना, UNCITRL, उसी पर बेस्ड है। देखो बार बार मॉडल लॉ वर्ड आ रहा है, मॉडल लॉ कहाँ का आर्बिट्रेशन है, ये अमेरिका का है, उसी पर ये पूरा बेस्ड है मॉडल लॉ, ध्यान रखिएगा, उसी के सारे कन्वेंशंस हैं, उसी पर इसको बेस किया गया है। अब देखिए हम लोग को करना क्या होगा कि 1996 का इन्फोर्समेंट डेट देख लेना होगा, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट देखना इस एक्ट में। देखो इन्फोर्समेंट डेट कौन सी दी है, हाँ, मगर उसके पहले ऑर्डिनेंस आ गया था नहीं, एक होगा देखो 22 जनवरी वगैरह, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था,
इसका 30 अगस्त 2019 हो गया तो
ठीक है,
और 25 जनवरी 1996
चूंकि ऑर्डिनेंस से चालू हो गया था, तो देख लीजिएगा इसका इन्फोर्समेंट डेट। इन्फोर्समेंट डेट देखने के बाद बेयर एक्ट को पढ़ाने से पहले या आर्बिट्रेशन को पढ़ाने से पहले इसमें आप लोग को दो अमेंडमेंट को देखिएगा, एक 2015 का अमेंडमेंट 2015 का, 2015 का अमेंडमेंट और दूसरा है 2019 का। 2019 का अमेंडमेंट तो ज्यादा एम्ड रखा गया था कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, तो दो है देखिए अमेंडमेंट मेजर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2019 वाला, 15 वाला ध्यान मत भी दीजिए तो चल जाएगा, किसको ध्यान दीजिएगा 2019 वाला, क्योंकि 2019 में आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है जो हमने बताया ना पार्ट वन ए, ठीक बड़ा अच्छा काम है अगर आर्बिट्रेशन का आपको अच्छा काम सीख लें आप ना, और आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाए ना, तो ये 54-58 से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, भारत का युवा जॉब सीकर नहीं है, जॉब गिवर है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी हमको बता रहे थे। हम लोग नौकरी लेने के चक्कर में ना पड़े कि रोजगार मेला लगा नौकरी, कुछ ऐसा काम करो कि 10-20-50 को क्या दो, अब आप बहुत सारे आया आशीर्वाद दे रहे हो कि अभिशाप दे रहे हो, बड़ा वकील बनने का हम आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं क्या भरोसा उठ गया हम लोग के ऊपर, कह सकते हो नहीं, भरोसा इस चीज का है कि जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, बाकी डेस्टिनी को थोड़ी ना हम लोग चैलेंज करते हैं। तो देखिए 2019 का अमेंडमेंट जरूर देखिएगा। फिर एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है जो हम लिखवा देंगे अभी, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ये था जो कोर्ट के सामने प्रॉब्लम आ रही थी, जिसपे आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, जो 2015 का अमेंडमेंट था वो डिस्कशन ये हुआ कि 2015 का जो अमेंडमेंट है उस दिन के बाद से ये अमेंडमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि प्रोस्पेक्टिव, यानी 2015 के अमेंडमेंट का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव, इसको लेकर डाउट था। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई वर्सेस कोची क्रिकेट एसोसिएशन के केस में बोला था इट हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देखो अपने नोट्स में लिखा है, हाथ से लिखा, देखो देखो केस क्या है हम बता दें,
केस का नाम है बीसीसीआई वर्सेस कोची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड।
अच्छा, इसको देखिए नोट करिए
2018,
क्योंकि कुछ केसेस पूछे जाते हैं इन बीसीसीआई वर्सेस कोची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड
2018,
इन बीसीसीआई वर्सेस कोची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड 2018, ये जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बीसीसीआई वर्सेस कोची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 2015 अमेंडमेंट एक्ट, 2015 अमेंडमेंट एक्ट, किस एक्ट में अमेंडमेंट, आर्बिट्रेशन एक्ट ना, हाँ एविडेंस नहीं, हाँ भाई वो 2015 अमेंडमेंट इन आर्बिट्रेशन एक्ट हैज अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हैज अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हैज अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, फुल स्टॉप, हैज अ फुल स्टॉप, बट आगे लिखिए बट
sir,
हाँ बेटा, हाँ बीसीसीआई वर्सेस कोची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड, कोची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 2015 अमेंडमेंट इन आर्बिट्रेशन एक्ट हैज अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, फुल स्टॉप, बट इन 2019 अमेंडमेंट एक्ट, बट इन 2019 अमेंडमेंट एक्ट, सेक्शन 87 एडेड, सेक्शन 87 इंसर्टेड, सेक्शन 87 इंसर्टेड, सेक्शन 87 इंसर्टेड विच प्रोवाइड्स दैट इसने कॉन्फ्लिक्ट एंड कर दिया, विच प्रोवाइड्स दैट 2015 अमेंडमेंट एक्ट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली, विच प्रोवाइड्स दैट 2015 अमेंडमेंट एक्ट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली। फुल स्टॉप। इन दिस रेफरेंस सेक्शन 87 ओवररूल्स द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इन दिस रेफरेंस द सेक्शन 87 ओवररूल्स द बीसीसीआई जजमेंट। वही ना अभी जो पहले बताया, उसमें क्या कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव है, जबकि 87 ने सारी कॉन्ट्रोवर्सी सॉल्व कर दी, और सेक्शन 87 कहा कि 2015 का अमेंडमेंट किस इफेक्ट से होगा, प्रोस्पेक्टिव, यानी इसने किस केस के जजमेंट को खत्म कर दिया, बीसीसीआई। एक बार सेक्शन 87 आप सब निकालिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि पहली बार हम भी पढ़ा रहे थे, एक बार चेक करिएगा। 87 देखिए, आखिरी सेक्शन होगा मेरे को,
सेक्शन 87 इफेक्ट ऑफ आर्बिट्रल एंड रिलेटेड कोर्ट प्रोसीडिंग्स।
अच्छा, अगर किसी के पास पुरानी वाली हो तो कतई नई वाली ले ले, ना चली, बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। तो अब देखिए हम किस सब पढ़ रहे हैं।
इफेक्ट ऑफ आर्बिट्रल एंड रिलेटेड कोर्ट प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड प्रायर टू 23 अक्टूबर 2015। Unless the parties otherwise agree, the amendments made to this act by the Arbitration and Conciliation Amendment Act 2015, 3 of 2016 shall A. not to apply to 1. Arbitral proceedings commence before the commencement of the Arbitration and Conciliation Amendment Act 2015. Second, court proceedings arising out of or in relation to such arbitral proceeding, irrespective of whether such court proceedings are commenced prior to or after the commencement of the Arbitration and Conciliation Amendment Act 2015.
बस रुकिएगा, रुकिएगा, देखिए इसको बस इतना ही जानना था, इस अमेंडमेंट ने ये 2019 में ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, इसने एकदम देखिए सेटल कर दिया ना, कहा जो 2015 अमेंडमेंट की जो डेट है ना इन्फोर्समेंट, मेरे ख्याल से क्या दिया गया, उस डेट के पहले फाइल हुए मैटर पे ये 2015 का अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होगा, यानी इसने क्लियरली हेल्ड डाउन कर दिया कि 2015 का अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं था। तो इसने सारी कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब आ जाइए हम लोग फिर अपने टॉपिक पे आए, हम लोग आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पढ़ने चल रहे हैं। जानते हैं ये पूरा जो टॉपिक है ना, ये कंसेंसस बेस्ड है, किस पर बेस्ड है। तो अब आर्बिट्रेशन में हम लोग को जाना है तो सबसे पहले एक मैंडेटरी प्रोसेस क्या है, देयर शुड बी एन आर्बिट्रेशन क्लॉज ना, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ए और बी कोई बिजनेसमैन है और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक और साइन कर लिया कि हमारे इनके बीच कोई डिस्प्यूट होगा इन राइटिंग, तो वी विल सॉल्व इट थ्रू आर्बिट्रेशन, इसी क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो फिर वो मैटर कहाँ सॉल्व होगा, केवल आर्बिट्रेशन में, और कहीं नहीं, बार लगता, ठीक है। तो सबसे पहली जो ड्यूटी होती कोर्ट की वो ये चेक करना कि वेदर देयर इज अ वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज, और ये प्रोविजन है सेक्शन 7 में, आर्बिट्रेशन क्लॉज से रिलेटेड किस में दिया है, सेक्शन 7 में आर्बिट्रेशन क्लॉज से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या वैलिड आर्बिट्रेशन, अच्छा अगर वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है तो तो या तो फिर दोनों पार्टी कंसेंसस होके रेफर करें, नहीं तो फिर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। कोर्ट भी तो आपके कंसेंट पे भेजती है ना, कोर्ट भी जब भेजती है तो तुमसे क्या करती है? अगर हम कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो नहीं लगेगा। ठीक, तो सेक्शन 7, इसीलिए सबसे पहले किस चीज की चुनौती होती कोर्ट में? अब मानिए ए और बी ने एक आर्बिट्रेशन क्लॉज साइन किया है, ए और बी ने क्या साइन किया है? आर्बिट्रेशन क्लॉज। और बाद में कुछ ए और बी का डिस्प्यूट हो गया, ए पहुंच गया सिविल कोर्ट में, ए पहुंच गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी के अगेंस्ट उसी मैटर में सिविल कोर्ट में। अच्छा, सिविल कोर्ट को तो कुछ मालूम नहीं भाई, वो क्या करे? उसने अपोजिट पार्टी को नोटिस देती है ना, जब डिफेंडेंट को नोटिस आए तो डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिखता है पहले ही कि सर बिकॉज इस मैटर में हमारा इनका एक ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट करता है, आर्बिट्रेशन क्लॉज, तो सर यू हैव नो ज्यूरिसडिक्शन टू सॉल्व दिस मैटर, प्लीज रेफर अस ऑन। अब यहां पर कोर्ट को चेक करना होगा वेदर देर इज अ वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज। अब दोनों पार्टी को सुनने के बाद कोर्ट सेक्शन 8 में डिसाइड करती है कि वेदर देर इज अ वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज। अगर वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो मैंडेटरी है कोर्ट को कि उसको कोर्ट कहां भेज दे उन लोगों को, आर्बिट्रेशन। तो अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो सेक्शन 8 में रेफर कहां किया जाएगा, रेफरेंस टू कहां रेफर कर दिया जाएगा, कोर्ट कह देगी हमारा ज्यूरिसडिक्शन बार हो गया, गो टू द आर्बिट्रेशन। अब आपका मैटर अगर कहीं सॉल्व होगा तो कहां होगा, आर्बिट्रेशन। तो सेक्शन 8 इसी बात की बात करता है और कहता है आपको आर्बिट्रेशन क्लॉज पे भेज दिया जाएगा अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज है आप लोग का। ठीक है, उसके साथ कोर्ट चाहे तो भेजने के साथ ही साथ कुछ एंट्री मेजर्स अडॉप्ट कर सकती है। देखिए, कोर्ट ने भेज तो दिया पर साथ ही साथ क्या दे सकती है, इंटरिम रिलीफ वगैरह। वो 9 में, किस सेक्शन में है? कोर्ट खुद ही इंटरिम रिलीफ दे रही है 9 में। और जब आपको आर्बिट्रेशन के पास भेज दिया जाएगा तो आर्बिट्रेशन भी इंटरिम रिलीफ देगी, वो 17 में। सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़ाना सब है मगर पहले आपको कुछ चुनिंदा चीजें बताएंगे। तो आर्बिट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा तब फिर कोर्ट में एक पार्टी जा रही, दूसरी पार्टी कहेगी सर हम लोग को कहाँ भेज दीजिए आप, आर्बिट्रेटर के पास, कोर्ट भेज देगी और फिर वहां मैटर सॉल्व होगा। ठीक, ये जो आर्बिट्रेशन है, अब आइए आपको सब बेयर एक्ट को अपने हाथ पे रखिए और हम लोग अब आ रहे हैं सेक्शन 1 पढ़े थे, सेक्शन 1 पढ़िए। अब एक एक चीज, अच्छा एक एक लाइन पे क्वेश्चन है बेयर एक्ट, इधर उधर नहीं देखना, केवल बेयर एक्ट देखिए। हाँ,
सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट,
तो इंडिया में पूरा लगेगा, पूरे कहां पर लगेगा देख
लीजिए, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया।
ठीक है,
टू एक्सप्लेन, चलिए सब सेक्शन 2 इसका, अरे सब सेक्शन नहीं, सॉरी पार्ट 1 आर्बिट्रेशन चैप्टर 1 जनरल प्रोविजंस सेक्शन 2 डिफिनीशन।
अब देखिए 2 का सब सेक्शन 1 पूरा क्या डील करता है, और डिफिनीशन क्लॉज से तो आपको मालूम ही है कि एक या दो क्वेश्चन मिलना है, डिफिनीशन क्लॉज से आपको मिलना ही मिलना है। तो पहला देखते हैं
पूरा की जो
निशान लगा, पूरा
ए आर्बिट्रेशन मींस एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाई परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन।
अब देखिए यहाँ कुछ इसको डिफाइन नहीं किया, आर्बिट्रेशन क्या है, डिफाइन तो हम लोग किए ना, आर्बिट्रेशन का मतलब एडजुडिकेशन बाई प्राइवेट पर्सन इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन, मगर यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ कहा चाहे परमानेंट आर्बिट्रेशन हो चाहे आर्बिट्रेशन हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा देखिए बी,
बी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 7।
अच्छा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमने कहा था ना सेक्शन 7 में, ठीक है, तो इसको भी बात है।
आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड,
अब ये प्री में आ चुका है, लिखा आर्बिट्रेशन अवार्ड इंक्लूड्स, आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स, पहला था फाइनल अवार्ड, दूसरा था इंटरिम अवार्ड, तीसरा था बोथ, किस पे टिक करेंगे, बोथ, ध्यान रखिएगा। आर्बिट्रेशन जब अवार्ड की, आर्बिट्रल अवार्ड की हम लोग बात करेंगे तो आर्बिट्रल अवार्ड्स दोनों तरह के होंगे, फाइनल भी और इंटरिम भी, ठीक है, अवार्ड मतलब जजमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन, जो कोर्ट जो आर्बिट्रेशन निर्णय देती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवार्ड। हाँ,
सी ए आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन मीन्स एन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट।
अब देखिए आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन मैंने कहा था ना पार्ट वन ए ऐड किया गया है। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन कौन क्रिएट करेगा, सुप्रीम कोर्ट या दोनों है दिखना। अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल अवार्ड की बात आएगी, अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगी, और अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो कौन बनाती है इंस्टीट्यूशन को, हाई कोर्ट। तो ये देखो दोनों बना रही है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट।
डी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मीन्स अ सोल आर्बिट्रेटर और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स।
अब देखिए आप सब डी है ना, अब इसमें भी देखिए क्वेश्चन यही भी यही पूछा है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, नाम तो लग रहा होगा कई लोग होंगे ना, बरकर है ना, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में सोल आर्बिट्रेटर हो सकता है या ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, एक तीन। तो यहां कह रहा है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में या तो सोल होगा या ऑड नंबर, सेक्शन 10 पढ़िएगा, सेक्शन 10 कहता कितने नंबर होंगे ऑड ना, तो इसलिए टिक कर लीजिए सोल भी हो सकता है, सोल आर्बिट्रेटर को भी आप क्या बोलोगे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, ठीक। हाँ,
ई कोर्ट मींस फर्स्ट इन द केस ऑफ एन आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्लूड्स द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चंस forming the subject matter of the arbitration if the same had been the subject matter of a suit but does not include any civil court of a grade inferior to the principal civil court or small causes।
क्यों हम कोर्ट पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ाना क्या है, मगर बीच बीच में कोर्ट का नाम आएगा, तो कह रहा जहां जहां कोर्ट वर्ड आए, जहां जहां इस बेयर एक्ट में कोर्ट वर्ड आए तो कौन सी कोर्ट समझे, तो नहीं बेटा कोर्ट का मतलब होगा यही सिटी सिविल कोर्ट, जहां पर वो मैटर ओरिजिनली सॉल्व करने के लिए जाता, 5 लाख तक का कहां जाता है जूनियर डिवीजन, 5 के ऊपर सीनियर डिवीजन, और दिल्ली दिल्ली ऐसी जगहों पर 2 करोड़ या 5 करोड़ के ऊपर का मैटर हाई कोर्ट सॉल्व करती है, यानी दिल्ली में हाई कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रखती है, तो इसीलिए तो इसने क्या कहा आर्बिट्रेशन में जहां जहां वर्ड कोर्ट आ रहा है तो वो मैटर जिस कोर्ट में फाइल होता, जिसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता वही कोर्ट कहलाएगी, तो अगर उत्तर प्रदेश में है तो 5 लाख के नीचे के मामले में कोर्ट कौन सी कहलाएगी जेडी, और 5 के ऊपर वाली सीनियर, और वही दिल्ली में है तो वहां देख लेना इस सब कैटेगराइजेशन है, वहां 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट जज है, 1 करोड़ के ऊपर वो शायद हाई कोर्ट को दिया, इसीलिए वर्ड इसमें क्या कहा ये कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट भी हो सकती है जहां पर हाई कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ड्रॉ करती है, और दिल्ली में मेरे पास 5 हाई कोर्ट है ना, जहां पे हाई कोर्ट दिल्ली है, बॉम्बे में भी है, दिल्ली बॉम्बे कैलकाटा ये जो 5 जो थी ना चार्टर वाली ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ड्रॉ करती है, ठीक। और चलिए
सेकेंड इफ द इन द केस ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन इफ द सेम हैड बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट एंड इन अदर केसेज हाई कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू हियर अपील्स फ्रॉम डिक्रीज ऑफ कोर्ट सबॉर्डिनेट टू दैट हाई कोर्ट।
अब ये देखिए प्री के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बना, आर्बिट्रेशन एक्ट में जहां जहां कोर्ट है कोर्ट का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, डोमेस्टिक का मतलब मैटर इंडिया का ही है, पार्टीज इंडिया की हैं, तो फिर जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन था अगर आर्बिट्रेशन में मैटर ना आता तो सिविल कोर्ट में जिस कोर्ट में जाता वो कोर्ट कोर्ट की डिफिनीशन में आएगी, कोर्ट के पास पूरी पावर है, ठीक है, जहां जहां वर्ड कोर्ट है, और अगर वो मैटर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसके पास था हाई कोर्ट, तो कोर्ट का मतलब फिर हाई कोर्ट, और अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तब फिर हाई कोर्ट, और कुछ सोचने नहीं है, अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो सिविल कोर्ट में नहीं आएगा ना, मैटर कहाँ जाता है सीधे हाई कोर्ट, तो कह रहा है अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो उस रेफरेंस में जहां जहां इस एक्ट में कोर्ट वर्ड आए तो उसमें कौन सा कोर्ट मानना, द हाई कोर्ट। यही कोर्ट की डिफिनीशन है जो आती है। क्यों ये बार बार, क्योंकि अभी देखना ना आगे चल के सेक्शन 9 में कोर्ट है, आगे चल के कई जगह कोर्ट में आप चैलेंज करते हो आर्बिट्रेशन अवार्ड को, तो कोर्ट कौन सी, इसीलिए बताया जाएगा कोर्ट का मतलब कौन सी कोर्ट, ये जो डिफिनीशन है।
एफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन,
ये भी इम्पोर्टेंट है,
मींस एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट, considered as commercial under the law in force in India and where at least one of the parties is first an individual who is natural national of or habitually resident in any country other than India, or second a body corporate which is incorporated in any country other than India, or third an association or a body of individuals whose central management and control is exercised in any country other than India, or fourth the government of a foreign country।
देखिए कितना अच्छा ये भी आ चुका है, ये सारे क्वेश्चंस आए इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, इसका क्या मतलब है? तो आप कहिए कि जब कम से कम एक पार्टी फॉरेनर हो, कम से कम एक पार्टी जो आर्बिट जो डिस्प्यूट है रिलेशनशिप लो कि कम से कम एक पार्टी अगर फॉरेनर है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इंटरनेशनल एटलीस्ट, दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ एटलीस्ट क्या कह रहा है, कंपनी एक अमेरिका की एक इंडिया की है, अब इनके बीच जो डिस्प्यूट है वो कौन सा डिस्प्यूट कहलाएगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो कम से कम जब एक पार्टी फॉरेनर हो तो ऐसे फिर इसको डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको फिर क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो इसीलिए प्री में आता है कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है, तो उसमें एक वर्ड ढूंढिएगा, एट लीस्ट वन पार्टी, एट लीस्ट वन कंपनी, एट लीस्ट इफ गवर्नमेंट इज अ पार्टी, वन गवर्नमेंट इज अ फॉरेन ओरिजिन। तो अगर विदेश का एक पार्टी भी है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। अच्छा ऑनलाइन बेटा आवाज एकदम सही,
yes,
समझ में भी आ रहा है?
यस सर, यस रिपीट कर दीजिए एक बार।
ये आईसीए वाला, हाँ
जी सर, इंटरनेशनल कमर्शियल।
देखो जब भी इंटरनेशनल वर्ड आ जाए तो इंटरनेशनल का मतलब उसमें जो डिस्प्यूटिंग पार्टी है कम से कम एक पार्टी कहाँ की हो, फॉरेन ओरिजिन की, एटलीस्ट वन पार्टी इज अ फॉरेन ओरिजिन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल कॉमर्शियल। और जब इंटरनेशनल कॉमर्शियल अवार्ड होगा तो उस मामले में आपके पास कोर्ट का मतलब फिर कौन सा कोर्ट होगा, हाई कोर्ट। इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन में कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट, तो सारा पावर किसके पास चला जाता है, हाई कोर्ट के पास। इसीलिए आईसीए का मैटर थोड़ा सा अलग रखते हैं। और देखिए
फिर है जी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन,
तो सीपीसी वाला है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो सीपीसी में था वो इंटरमीडलर हो गया, द पर्सन हु रिप्रेजेंट द
रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर इंटरमीडलर,
ये बाद में हो जाएगा, ये तो सीपीसी वाला है।
एच पार्टी मींस अ पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आई प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। और जे रेगुलेशंस मींस द रेगुलेशन मेड बाय द काउंसिल अंडर द एक्ट।
अब ये बाकी नहीं था, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने कोर्ट बताया, फॉरेन वाला बताया, और जो दो तीन हम लोगों ने पढ़े थे वो इम्पोर्टेंट था। अच्छा ये किस सेक्शन में था, टू सब सेक्शन वन। अच्छा जल्दी नहीं मैं करूँगा, कर देंगे जल्दी कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक दो दिन लग सकता है, और अभी हम लोग पास कोई काम भी नहीं है, काम का मतलब यूपी का वैकेंसी नहीं आया है ना, काम कब आता है, बस हम लोग के लिए काम कौन सा होता है, बाकी तो ये तो टाइम पास है, ठीक है। हाँ
सब सेक्शन टू, दिस पार्ट शैल अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 927 एंड क्लॉज बी of subsection 1 of subsection 3 of subsection 37 shall also apply to international commercial arbitration even if the place of arbitration is outside India and an arbitral award made or to be made in such place is enforceable and recognized under the provisions of part 2nd of this act.
देखिए कह रहा है कि भाई ये चैप्टर तो तब लग रहा है ना जब आर्बिट्रेशन कहाँ पर हुआ हो, चाहे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो और चाहे इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कौन होना चाहिए? ये चैप्टर कब लगेगा? जब प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन मैटर कहाँ सॉल्व किया गया हो, भारत में, तभी तो लगेगा। अगर कोई मैटर विदेश से सॉल्व करा के लाए हो और उसको इन्फोर्स इंडिया में कराना चाहते हो तो इसको कहेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। उसके लिए देखो चैप्टर 2nd हम बताए थे ना, इनफो न्यूयॉर्क का 2 कन्वेंशन उसी पर चलता है, इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। तो देखो कह रहा है चाहे देसी मैटर हो चाहे विदेशी, भारत में सॉल्व किया गया तो चैप्टर लगेगा। अगर वो आर्बिट्रेशन विदेश में हुआ है और अवार्ड यहाँ इन्फोर्स होना है तो यहाँ कह रहा है तब भी ये चैप्टर तो नहीं लगेगा, मगर 3 सेक्शंस कहाँ लगेगा ना? इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स में कौन कौन से सेक्शन लगेंगे? 9
agreement to the country, the provision of section 9, 27 and clause B of subsection 1 and subsection 3 of section 37, ये
तीन sections। तो अगर आपसे कहा जाए कि foreign award का enforcement होना इंडिया में तो बताइए chapter 2nd के कौन से section लगेंगे, कौन कौन से apply होंगे? 9 interim relief वाले, ठीक है, 27 और फिर आखिरी है कौन सा? 37
सबसेक्शन 3। दिस पार्ट शैल नॉट अफेक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स्ड बाय वर्च्यू ऑफ विच सर्टेन डिस्प्यूट्स मे नॉट बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन। सबसेक्शन 4, दिस पार्ट एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 40, सेक्शन 41, 43 शैल अप्लाई टू एवरी आर्बिट्रेशन अंडर एनी अदर इनएक्टमेंट for the time being in force as if the arbitration were pursuant to an arbitration agreement and as if that other enactment were an arbitration agreement except in so far as the provisions of this part are inconsistent with that other enactment or with any rules made there under।
sabki parikha ho gayi hogi law ki, hai ram ye sab kya nikal gaya sab, hai na tough lag raha hai na, तभी तो हमको ठंडक में भी गर्मी लग रही है। आप लोग तो पढ़ रहे हैं और जो इसकी पढ़ाने में उसकी हालत देखिए, कोई सीआरपीसी सीपीसी नहीं है कि इसको 20 साल से पढ़ रहे हैं वहीं सुना दें। है मगर आसान, क्यों आसान है? क्योंकि हमने पढ़ लिया। कोई भी चीज कब तक टफ होती है? जब तक आप उसके थ्रू पास, जब आप पास कर जाते हैं उसके थ्रू तो आपके लिए इजी होती है। पहले 2-3 देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, इसको समझिए। 2-3 एक बार पहले सबसेक्शन 3 पढ़ो, आराम से पढ़ेंगे
सबसेक्शन 2 फिर। हाँ, से
पहले 3 सबसेक्शन 2 का 3 अभी जो पढ़े
सबसेक्शन 3 ना।
हाँ हाँ, सबसेक्शन
दिस पार्ट शैल नॉट अफेक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच सर्टेन डिस्प्यूट्स मे नॉट बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन।
रुकिएगा, अपनी अपनी जरा सा, आप सब ने नोट्स प्रिंट आउट कराए होंगे, अगर कराए हैं तो उसमें देखो एक क्वेश्चन बनता है। 2-3 कह रहा है वो मैटर आर्बिट्रेशन को नहीं भेजे जाएंगे जिन मैटर को स्टेट्यूट रोक देता है। अगर कोई लॉ प्रोहिबिट करता है तो फिर वो मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं आएगा। तो अब देखो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट मैटर इज नॉट सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन, व्हाट डिस्प्यूट कैन नॉट रेफर टू आर्बिट्रेशन। समझ गए ना क्वेश्चन? 2 का 3, 4 पेज नंबर 4 पे आइए। आप लोग ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं निकलवा लीजिएगा, कंजूसी नहीं ठीक है। हाँ मैं वो वही मतलब 15-16 पेज के लिए पूरी कंजूसी आ गई, 13 पन्ने होंगे, कुछ लिमिटेशन होगा। अब ऐसे जाएंगे तो पजला वो पेप्सी विथ कोला और पेटीज खा लेंगे, वो सस्ता है। और आप कहेंगे 30 पन्ना निकलवाना बड़ा महंगा है। कई लोग होते हैं कहते हैं हम जाएंगे अमीनाबाद से निकलवा के लाएंगे। हाँ
पेट्रोल देखेगी कितने प्रिंट ऑफ
प्रिंट आउट निकला, ये दिमाग आदमी लगाता है, जहां पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए वहां पर दिल लगाओ, और जहां दिल लगाओ वहां दिमाग मत लगाना, वरना तो उसका सब खराब हो जाता है। तुम ज्यादा ध्यान दो बताओ, अब हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बहुत तो बच्चे का है तो बता रहा है, आगे आगे बता रहा है। ठीक,
व्हाट मैटर्स कैन नॉट बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन।
देखिए पेज नंबर 4 पे
5 पे
हम लोग 4-5 पे है सब। देखिए सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 कह रहा है कुछ मैटर ऐसे हैं जिनको आर्बिट्रेशन में रेफर, जैसे क्रिमिनल मैटर, मर्डर का मैटर क्या भेजोगे आर्बिट्रेशन में? क्या मैटर मर्डर का मैटर है सॉल्व करा लो? नहीं भाई, क्रिमिनल मैटर कैसे होगा। इसी तरह जैसे सक्सेशन का मैटर है, खूब प्री में आता सक्सेशन का, प्रोबेट का मैटर केवल प्रोबेट कोर्ट सॉल्व करेगी। इनसॉल्वेंसी का मैटर है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ऐसा डिस्प्यूट जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व ना हो, रेम नेचर का हो। देखिएगा दिमाग, अगर पर्सोनम नेचर का डिस्प्यूट है तो कौन सॉल्व कर देगी? आर्बिटर। बट राइट इन रेम नेचर का है तो, जैसे कि मॉर्गेज, मॉर्गेज में रिडम्पशन एंड फोरक्लोजर बार बार पूछता है दिल्ली में। रिडम्पशन फोरक्लोजर में दो पार्टी नहीं होते हैं, बहुत से पार्टी हो सकते हैं, इसीलिए मॉर्गेज का मैटर कभी भी आर्बिट्रेशन को रेफर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि किस नेचर का है? वो रेम नेचर का, उसमें दो पार्टी ही नहीं बहुत सी पार्टी हो सकती। तो अंकित सर पढ़ने चलना, इसको ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हमने लिख रखा है।
What matters cannot be referred to arbitration? The following kinds of matters cannot be referred to arbitration. Number one, criminal proceedings. If the criminal proceedings non-compoundable involve a dispute, अल्लाह नहीं कौन बुनबुन
आराम से बेटा आराम से सुन लीजिएगा, एकदम ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, ये हमारे एग्रीमेंट में नहीं लिखा था, ये वही है जो होटल में प्याज सिरका मिलता है। सिरका प्याज आता है?
सिरका प्याज नहीं है, सिरका प्याज तो वैसे मिल जाता है, ये एक स्पेशल डिश मिल गई आपको,
ये आपको स्पेशल दे रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। हाँ
शांत शांत, अच्छा आप शांत, एकदम शांत
गौतमी करें, अचार भी हम ले लेते फ्री में।
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स,
ये समझ में नहीं आएगा अगर नहीं।
एक तो इधर सब इधर ही बैठ गए आज,
तो वो है प्रतीक्षा है, गैंग लीडर आई उधर बैठे।
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नॉन कंपाउंडेबल इन्वॉल्व अ डिस्प्यूट व्हिच इज प्योरली क्रिमिनल एंड व्हिच कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सिविल एक्शन।
अच्छा, जो क्रिमिनल मैटर वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं होगा। हाँ,
सेकंड इलीगल ट्रांजैक्शंस, थर्ड मैट्रिमोनियल मैटर।
अच्छा, मैट्रिमोनियल मैटर नहीं सॉल्व होता, ध्यान रखिएगा, जो विवाह विच्छेद वगैरह डाइवोर्स वगैरह का मीडिएशन में जरूर भेजते, मगर सॉल्व कौन करता है उसको? फैमिली कोर्ट। तो चूंकि फैमिली कोर्ट स्पेशली बनी हुई है तो वो मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा, तो जितना फैमिली मैटर है वो फैमिली कोर्ट सॉल्व करे। ठीक,
टेस्टामेंट्री मैटर्स।
अच्छा, टेस्टामेंट्री यानी वसीयत से रिलेटेड ना, टेस्टामेंट्री के लिए टेस्टामेंट्री एक्ट बना हुआ है, उसके लिए अलग से कोर्ट बनी है, तो वो भी मैटर यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक,
फिफ्थ इंसॉल्वेंसी ऑब्लिक बैंकक्रप्सी।
ठीक है,
अच्छा उसमें एक केस भी एक दो है, पढ़ते
वो केस अपना पढ़ लीजिएगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
केला भाई, नंदू भाई और
वो पढ़ लेंगे, सौदामनी वाला। हाँ,
फिफ्थ इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, सिक्स्थ है ल्यूनेसी प्रोसीडिंग्स।
ल्यूनेसी यानी माइनर ना, उसके लिए इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है ना, वो यहाँ डिसाइड नहीं होती।
और प्रोसीडिंग्स फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इफ फाइल इन द लेबर कोर्ट येट थ्रू नेगोशिएशंस, यूज ऑफ गुड ऑफिसेज एंड मीन्स ऑफ रिकंसिलिएशन एटसेट्रा इन सॉल्विंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर स्टिल इन वॉग एंड आर वैलिड।
अच्छा, देखिएगा ये सारे मैटर कहाँ से सॉल्व नहीं होंगे, यानी ये एग्जाम्पल किसका है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 का है ना। हमने क्या कहा था, सेक्शन 2 में सब सेक्शन 3 है, बहुत से ऐसे मैटर हैं जिनको आर्बिट्रेशन रेफर, वो लिस्ट कौन सी है? तो एक हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा। ठीक है, और
एट वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956,
वो कंपनीज एक्ट से डील होता है। ठीक है,
नाइन्थ डिस्प्यूट्स कवर्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड द विक्टिम पार्टी चूजेस द फोरम ऑफ कंज्यूमर कोर्ट.
अच्छा कंज्यूमर कोर्ट का मैटर है तो फिर वो कहाँ भेजिए कंज्यूमर.
टेंथ टॉर्ट ऑफ फार्मिंग ऑफ बिजनेस रेपुटेशन थ्रू एडवर्टाइजिंग कंपेन्स. और इलेवेंथ है क्लेम ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज लाइंग इन अ फॉरेन कंट्री. ट्वेल्थ प्रोसीडिंग्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियंस इफ इट हैज बीन प्रेफर्ड बाई अ कोर्ट. ऑल दी अबव केसेस स्टैंड आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ आर्बिट्रेशन बिकॉज ऑफ द प्रोविजन्स मेड बाय द स्टेट्यूट्स विच गवर्न देम एंड अंडर सेक्शन 2(3), 2 सबसेक्शन 3 ऑफ द 1996 एक्ट. इट इज प्रोवाइडेड दैट वेयर सम स्पेशल लॉ हैज प्रोहिबिटेड द एप्लीकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सोल्यूशन ऑफ देयर डिस्प्यूट्स द 1996 एक्ट विल नॉट अप्लाई.
अगर कहीं स्पेशल लॉ में लिखा है कि ये मैटर आर्बिट्रेशन को नहीं भेजा जाएगा और ये मैटर इसी एक्ट से सॉल्व होगा तो फिर ये आर्बिट्रेशन एक्ट अप्लाई यही सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में प्रोवाइडेड और भी लिस्ट है.
मॉर्गेज केसेस विच अफेक्ट इन रेम दैट इज आर नॉट कंफाइंड टू टू पार्टीज आर नॉट ऑफ इन पर्सोनम नेचर आर टू बी ट्रीटेड एज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन.
आर्बिट्रेशन भी क्या होगा. अरे ये जो मॉर्गेज है ये रेम नेचर का है रट लीजिए ये भी आर्बिट्रेशन से सॉल्व. कई बार पूछता है टिनेंसी के मैटर्स. देखिए जो टिनेंसी अगर स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही तब वो आर्बिट्रेशन से लेगी नहीं सेक्शन 2 सबसेक्शन 3. अगर कोई स्पेशल एक्ट से कोई मैटर जैसे यूपी टिनेंसी एक्ट बना है उत्तर प्रदेश में भी 2021 में बनाया है ना. अब वो एक्ट अगर बना दिया तो क्या किराएदार और मकान मालिक अपने मैटर को आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे. नहीं अगर सॉल्व होना होगा तो किस एक्ट से होगा यूपी टिनेंसी. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 कह रहा है अगर किसी स्पेशल लॉ ने उस मैटर को प्रोहिबिट कर रखा है कि उसका आर्बिट्रेशन में मैटर नहीं जाएगा तो फिर वो मैटर आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं होगा. इसमें आर्बिट्रेशन ज़्यादातर पर्सोनम नेचर के मैटर सॉल्व करती है जिसमें कितने लिटिगेटिंग पार्टी हो. मगर ऐसा राइट जो रेम नेचर का है जो सबके मैट्रिमोनियल मैटर किस नेचर का होता है याद है आपको सेक्शन 41 अभी तो पढ़ी ना इंसॉल्वेंसी एडमिरल्टी मैट्रिमोनियल और यही देखिए ये वाला था प्रोबेट यही. तो यहाँ पे भी देखिए कोई लिंक अलग नहीं है. पूछा जाए कौन से मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं है कहीं सेक्शन 41 वाले क्योंकि सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट वाले मैटर कैसे होते हैं राइट इन रेम. वो चारों मैटर यहाँ से क्या कर दिया हटा दिया का यहाँ पर वो सॉल्व क्योंकि वहां दो आदमी का नहीं इफेक्ट हो रहा है वहां रेम इन नेचर का है. ठीक है और चलिए
और द नॉन आर्बिट्रल केसेस आर असाइंड टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ प्रॉपर कोर्ट थ्रू अ डिस्क्रिशन.
हाँ बेटा
रेम वाले पार्ट को फिर दोबारा बता दीजिए.
अच्छा ऐसा मैटर ना ऐसा मैटर जो जो पार्टी से रिलेटेड केवल ना हो जो जो राइट पर्सोनम ना हो दो व्यक्तियों के बीच का अधिकार ना हो जिससे वर्ड एट लार्ज इफेक्ट होता हो यानी जो राइट इन रेम. और राइट इन रेम का बेस्ट एग्जांपल है सेक्शन 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिरल्टी प्रोबेट इंसॉल्वेंसी और मैट्रिमोनियल. ये चार मैटर ऐसे हैं जो आर्बिट्रेशन में तो आएंगे ही नहीं क्योंकि वो कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है. वो डिसीजन केवल किससे हम लोग लेंगे कोर्ट से. ठीक हाँ वेलकम बेटा.
सेक्शन 2(4) आ गया. रुको भैया अभी 2 तो पूरा कर लें.
रुको राजू कहाँ जा रहे.
अच्छा सेक्शन अब 2(4) पढ़ दें.
देखिए 2(4) को एक बार देखिए कितना बजा है कि सब कह रहे हैं.
अरे अभी कुछ नहीं अभी 6:30 हो रहा है. हाँ अरे यार इसको तो हो जाने दो भाई मेरे.
नहीं ले रुक जाओ एक मिनट. इतना बेटा मेहनत चुकी लगती है ना और खाने वाले का स्वाद ना है तो अब बताओ इतना सबको समझ में आया. ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं आर्बिट्रेशन का ये किससे रिलेटेड है. ये एडजुडिकेटरी प्रोसेस है बट बाय प्राइवेट पर्सन. एडजुडिकेटरी प्रोसेस बाय प्राइवेट पर्सन और उसी में इसको हम लोगों ने पढ़ा है. बेस्ड किस पर है मॉडल लॉ कहाँ का था अमेरिका. क्यों 2019 का अमेंडमेंट करके आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई क्योंकि हम टू अट्रैक्ट द फॉरेन लिटिगेशन भारत में विदेशी लिटिगेशन को अट्रैक्ट करें हम सॉल्व करें लीगल सर्विसेज की फील्ड में हम लोग डे बाय डे क्या होते जाएं, बढ़ते जाएं। ठीक है, 2-3 में कहा वो मैटर मत लाइए जो बार्ड है, और 2-4 कहता है वो मैटर जो किसी स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, देखिए आर्बिट्रेशन दो तरह का होता है, ये है कंसेंसुअल आर्बिट्रेशन जो हम पढ़ाएंगे, ये कौन सा आर्बिट्रेशन है, ये कंसेंसुअल आर्बिट्रेशन है विच अराइजेस ड्यू टू सेक्शन 7 ऑफ द आर्बिट्रेशन, और एक होता है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। अगर किसी स्टैट्यूट में आर्बिट्रेशन की बात की है तो वो स्टैट्यूट अप्लाई होगा, उसको कौन सा आर्बिट्रेशन कहते हैं, स्टैट्यूटरी। और वही 2-4 कह रहा है, एक बार बस 2-4 पढ़ दीजिए एंड हो जाए।
सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 दिस पार्ट एक्सेप्ट सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 40 सेक्शन 41 एंड 43 शैल अप्लाई टू एवरी आर्बिट्रेशन अंडर एनी अदर इनएक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज इफ द आर्बिट्रेशन वर पर्सुएंट टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड एज इफ दैट अदर इनएक्टमेंट वर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक्सेप्ट इन सो फार एज द provisions of this part are inconsistent with that other enactment or with any rules made there under।
कह रहा है कि generally तो consensual arbitration की हम लोग बात कर रहे थे, मगर जो non-consensual arbitration है यानी जो किसी statute के द्वारा prescribed है, किसी act में है, हम भेज देंगे आपको लिख के, किसी act में जो arbitration की, जैसे SEBI Act है, SEBI Act में arbitration के लिए अलग से provision है, सेबी एक्ट जब पढ़ेंगे ना स्टॉक एक्सचेंज वाला एक्ट, उसमें लिखा 2 आर्बिट्रेटर होंगे, जबकि हमारे सेक्शन 10 में कितना लिखा है भाई, ये ऑर्डर नंबर पे होना चाहिए ना, 1-3। तो सेबी एक्ट ओवरराइड करेगा, यहाँ कह रहा है किसी स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन से आप अगर गवर्न हो रहे हैं तो स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, और इसमें इनकंसिस्टेंसी हो तो वो प्रिवेल कर जाएगा। कौन सा स्टैट्यूट, हमेशा स्पेशल एक्ट किस पे प्रिवेल करता है, जनरल है। तो कह रहा है अगर किसी स्टैट्यूट ने आर्बिट्रेशन का प्रोविजन रखा है तो अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो कौन सा प्रिवेल कर जाएगा, स्टैट्यूट का। इस तरह से थोड़ा हम लोग को 1-2 दिन लगेगा ना, लग जाए कर लिया जाएगा, अभी इसको कल करते हैं तब मेन ट्रैक पे आएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग बंद करते हैं आर्बिट्रेशन की, टुडे इज द फर्स्ट क्लास, कल दूसरी क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन।